الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 31 سے 72 تک آج ہم لیسن کریں گے. ثم انشأنا من بعدہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد قرنن آخرین. قرن معنی ہوتا ہے قوم کے لیے بھی آتا ہے، ایسے لوگ جو ایک ہی زمانے میں ہوں ان کے لیے بھی آتا ہے، ایک جنریشن جس کو کہتے ہیں زمانے کے لیے بھی آتا ہے، سینچری کے لیے بھی آتا ہے. تو ہم نے اٹھایا ان کے بعد قرن کو، یعنی قوموں کو یہاں پہ لے لیں، آخرین دوسری، آخر ہوتا ہے تو لاسٹ، آخر ہوتا ہے تو دوسری. کس کے بعد؟ قوم نوح کے، کیونکہ ان کا قصہ ہم پچھلی آیات میں دیکھ رہے تھے. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری قوموں کو اٹھایا، پھر ان میں سے ایک قوم کا ذکر آگے آ رہا ہے اور اس قوم کا نام نہیں لیا گیا، مگر مفسرین کہتے ہیں یہ قوم عاد ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد فالوئنگ پھر قوم عاد ہی آئی تھی. مگر ہمیں اس میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کون سی قوم ہے، اس پہ کافی بحثیں بھی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے سمود ہے، کوئی کہتا ہے عاد ہے، لیکن لا يعلمهم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جو بھی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، وہ چیز ہے اصل. تو فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ہم نے بھیجا ان میں سے ایک رسول، منہم انہی میں سے. سب سے پہلے یہاں پہ یہ بات ہے کہ رسول جب بھی آئے اپنی قوموں میں سے ہی آئے، سوائے لوط علیہ السلام کے، مگر باقی جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی قوم میں سے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ رسول جو ہے جب انہی میں سے ہوگا تو ان کے کلچر کو، ان کی زبان کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے معاملات کو، یہ سب کو جانتا ہوگا. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے مثلا آپ، ہمارے بچے یہاں پہ چونکہ پلے بڑے ہوتے ہیں، تو اگر مثلا پاکستان سے لا کے کسی ٹیچر کو لا کے ان کو پڑھانے کو بٹھا دیا جائے تو ان بچوں کو نہیں سمجھ آتی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ان کے کلچر کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے مسائل کو نہیں سمجھتے، وہ ان کی ہو سکتا ہے لینگویج کو نہ اس طرح سے سمجھ سکے، تو مشکل ہو جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے بھیجا تاکہ اس قوم کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو، اور رسول انہی کی بات ان کی زبان میں اور ان کے مسائل کو چونکہ جانتا ہوگا تو ان کے مسائل کے حل میں ان کو مدد کرے. اور ہر رسول کا کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی اور الہ نہیں اس کے سوا، افلا تتقون، پھر کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم باز نہیں آتے؟ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ہر رسول کا پیغام صرف یہی ایک تھا، جو بیسک پیغام تھا جو ہر رسول نے دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ قوموں کے اندر شرک آ جاتا تھا ٹائم ٹو ٹائم جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جہاں اور ٹھیک ہے دوسرے مسائل تو ہوتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ریزن تھا رسولوں کو بھیجنے کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، ایک اللہ کی پہچان اور ایک اللہ کے آگے ان کو جھکنے کا پیغام دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان. اللہ کو تو بعض कौमें जानती भी थी कि अल्लाह ताला है, एक खुदा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो खुदा है, इसके ऊपर मुश्किल आती थी। और आज भी देखें, अल्लाह ताला को मानने वाले लोग हैं मौजूद, लेकिन उनके अंदर शिर्क आ चुका है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के लिए तो पैगंबर आए थे और यही रसूलों का मकसद था। आज भी इसी काम को करने की जरूरत है कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, जबकि इलाह मुख्तलिफ बनाए में आज भी। तो प्रॉब्लम याद रखें, पिछली कौमों का ये नहीं था कि वो खुदा को पहचानते ही नहीं थे, उनको अल्लाह ताला का पता नहीं था, लिहाजा वो इंट्रोड्यूस कराने आ रहे थे। नहीं, वो इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे, बहुत सारी कौमों को ऑलरेडी पता था। अब मुशरिकीन मक्का को भी पता था कि एक अल्लाह है, वो हज भी करते थे, लेकिन सिर्फ वही अल्लाह है और वही इलाह है, वही सिर्फ खुदा है, वही सिर्फ इबादत के लायक है। यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, और आज का भी एग्जैक्ट सेम मसला है। लोग कहते हैं हम मानते हैं अल्लाह को, कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि कभी कहीं सजदे कर रहे हैं, कहीं किसके नाम की नमाजें पढ़ रहे हैं, नजरों न्याज किसके नाम की दे रहे हैं, दुआएं किससे मांग रहे हैं, खुद ही आप देख लें। तो अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो? वकाल अल मलअ मिन कौमी, और कहा सरदारों ने उनकी कौम से, किसकी, हूद अलैहि सलाम आए थे ना आद की तरफ, तो उनकी कौम के सरदारों ने कहा, अल्लतीना कफरु, जिन्होंने कुफर किया था, वकज्जबू बिलिकाइल आखरती, और उन्होंने झुटलाया आखरत की मुलाकात को, अतरफनाहुम फिल हयाति दुनिया, और हमने उनकी दुनिया की जिंदगी में उनको बड़ी आसूदगी दी हुई थी। तो उन मला का जो सरदारों के प्रॉब्लम्स क्या थे, नंबर वन प्रॉब्लम अल्लदीना कैफरू, नंबर टू प्रॉब्लम वो आखरत की मुलाकात को नहीं मानते थे, और नंबर थ्री अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने उनको बड़ी खुशहाली दी हुई थी। इससे आपके जहन में कोई इमेज बनता है? एलीट क्लास, बड़े दौलतमंद है, लेकिन डोंट केयर एटीट्यूड टूवर्ड्स दीन। कैफर वो, बाज तो अल्लाह को तो जैसे मैंने आपको बताया मानते थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इलाह बना रखे थे, ये कुफर है। नंबर टू, बाज लोग कहते हैं तो कोई बात नहीं, खुदा को तो मानते हैं ना, लेकिन ईमानियात में एक बहुत बड़ी चीज जिसको मानने के जरूरी है एक ईमान वाला होने के लिए, वो है लिकाइल आखिर, आखिरत की मुलाकात। यानी एक दिन ऐसा है कि अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है और मुझे हिसाब किताब देना है, ये सही अकीदा है आखिरत के बारे में, और ये अकीदा होना जरूरी है, यानी आखिरत का सही अकीदा। गलत अकीदा भी है, और गलत अकीदा क्या है, जो यहूद का था, लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामा मादूदा, हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद एक गिनती के दिन, ये गलत अकीदा है। आपने खुद ही फैसला कर लिया आग कितने दिन छुएगी कितने दिन नहीं, मैं कितने दिन आग में रहूंगा, खुद नहीं आप बता सकते। आखरत का अकीदा दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जब इस अकीदे के अंदर प्रॉब्लम आती है तो फिर इंसान के सारा जो अमल है वो भी खराब हो जाता है। लिहाजा आखरत का अकीदा, सही अकीदा रखना जरूरी है, उसके लिए आखरत के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ ये कह देना कि मैं मानती हूं कि कयामत है, ये इतना काफी नहीं है, कयामत का सही इल्म ये जरूरी है। और उनको अल्लाह ताला ने बड़ी आसूदगी दी हुई थी। असल में जब इंसान के पास नेमतें ज्यादा हो जाती है ना, तो वो दुनिया की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको आखरत की बात करनी भी अच्छी नहीं लगती, वो नहीं सोचना चाहता कि कोई आखरत है। और आप देखेंगे कि अक्सरियत जो बिगड़े हुए लोगों की होती है, अक्सरियत, सारे नहीं कहते लेकिन अक्सरियत, वो मालदार लोगों की होती है, एलीट क्लास। आज भी अपने माशरों में देखें, ठीक है, गरीब तबका एक बिल्कुल जाहिल ज्यादा होता है और जहालत उनमें इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बिगाड़ है ना वो ऊपर से आता है ज्यादा। आप देखें जो आसूदा मालदार लोग, पैसे वाले लोग जिनको कहते हैं, उनसे बिगाड़ शुरू होता है और लोग उनकी देखा देखी वही उल्टे काम करते हैं। तो वो कहते थे قال الملأ، उन्होंने कहा आगे, मा हादा इल्ला बशर मिसलुकुम, ये आप समझ लेंगे। कहा किसने? सरदारों ने। बीच में सरदारों की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो उनकी कौम से थे, उन्होंने कुफर किया, उन्होंने आखरत को झुटलाया और वो बड़े आसूदा होते थे। अल्लाह ताला ने उनको आसूदगी दी भी थी इस दुनिया की जिंदगी में, बड़े दौलतमंद थे, नेमतों में रहते थे। तो वो कहते थे मा हादा इल्ला बशर मिसलुकुम, नहीं ये मगर एक इंसान ही है तुम्हारे जैसा। याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन, तो ये भी वही खाता जो तुम खाते हो। वयशरबु मिम्मा तशरबून, और ये भी वही पीता जो तुम पीते हो। उनके लिए प्रॉब्लम क्या था कि ये हमारे जैसा इंसान क्यों है, खाता पीता क्यों है? जैसे पहले भी आया कि ये हम इसको क्यों मानेंगे, ये तो हमारे जैसा इंसान है और बाजारों में चलता फिरता है। इससे एक तो ये बात हमें अच्छी तरह पता चलती है कि तमाम अंबिया बशर थे। आज ये बात कह दी जाती है ना, और सूरह कहफ के एंड में भी हम देखते हैं अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमा दिया, कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूँ। तो बशर तो होते ही थे रसूल जो थे, खाते थे, पीते थे, बाजार में जाते थे, उनकी जरूरियात थी। मगर क्या फर्क था उनका आम इंसानों से, जो बहुत बड़ा फर्क है कि उनके ऊपर वही नाजिल होती थी जो उनको तमाम इंसानों से ऊपर कर देती थी। तो ये नहीं कि वो बशर नहीं होते थे। आज ये बात जो उनके लिए प्रॉब्लम थी, वो कहते थे ये बशर क्यों है, आज भी ये कहते हैं वो बशर थे ही नहीं। वो कहते थे बशर क्यों है, वो बशर मानते थे, आज कहते हैं बशर ही नहीं थे, क्योंकि रसूल बशर हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम तो वही हो गया ना, क्या बशर रसूल नहीं हो सकता? अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ज्यादा ताजीम दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन इंसान चाहता है कि फरिश्तों में कोई बशर वो रसूल हो, इंसानों में नहीं हो सकता। ये उनका प्रॉब्लम था, और आज भी ये मानने को तैयार नहीं है लोग कि रसूल इंसान होते थे। कहते हैं रसूल जो है वो नूर थे। ये कहाँ पे है रसूल नूर थे, कहीं कुरान में भी बता दें। वला इन अतातुम बशरम मिसलु मिसलकुम इन्नकुम इज़ल लखासिरून, अगर तुमने इताअत कर ली एक इंसान की अपने जैसे की, तो फिर तुम तो यकीन खसारा पाने वाले हो। ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? ये सरदार कह रहे हैं, दौलतमंद लोग कह रहे हैं, किसको? आम पब्लिक को, उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो इनके पीछे ना चलना, ये तो हमारे जैसे ही इंसान है, इनके पीछे जाके क्या करना है? अगर तुम अपने जैसों के पीछे ही चल गए तो बड़े बड़ा खसारा है तुम्हारे लिए। तो ये उस वक्त भी और आज भी दीन और तकवा की निशानी समझी जाती है, अल्लाह वाले उसको समझा जाता है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं हूं। वो भी कहते थे कि मतलब है कि ये तो हमारे जैसे इंसान है ना, शादियां भी करते हैं खाते पीते में, बस उस वक्त भी और आज भी समझते हैं कुछ सुपरफिशियल सा नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा। इसीलिए देख लेना आप लोगों को कि जो आधे नंगे फिर रहे होते हैं जमीन पे बैठे हुए हैं, उनको ना खाने का पता ना पीने का पता, इतने अरसे से नहाए नहीं, वो उनको अपना ही होश नहीं है। उनको कहते हैं बड़े पहुंचे हुए, बड़े अल्लाह वाला है, ये उसके पास जाके कहते हैं आप हमारे लिए दुआएं, मलंग लोग हैं ये, दरवेश लोग हैं ये क्या है? जिसको तो खुद अपनी होश नहीं है उसको अल्लाह वाला समझते हैं। और अगर कोई गाड़ी में आ जाए, किसी ने अच्छे कपड़े पहने, तो कहते नहीं जी ये तो यहूदी इनको फंड करते हैं, ये तो नहीं, ये तो दीन वाले नहीं। कैसा हमने दीन का कॉन्सेप्ट बनाया है? इसी वजह से कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत गरीब बन के दिखाएं कि ये मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बस एक सफेद कपड़ा पहन के बस बैठी रहूं और कुछ ना खाऊं और ना पीऊं और ना कुछ बोलूं, इसलिए कि मैंने अपने आप को शो करना है कि मैं बहुत अल्लाह वाली। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हलाल से आपको मिल रहा है तो आप अच्छा खा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, अच्छा पहन रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो वो कहते थे ये हमारी तरह क्यों है, कुछ सुपर नेचुरल चीज कोई क्यों नहीं है? और अगर तुमने इनकी मान ली ना, तो फिर बड़े खसारे में हो गए। तो लोग क्या करते थे फिर, इनकी सुनते थे? जी हाँ, लोग इन्हीं की सुनते थे, क्योंकि आज भी ट्रेंड सेटर्स कौन होते हैं? ये मला, एलीट क्लास, दौलतमंद लोग। कहते हैं ना आज के ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड किसने बनाया होता? आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा किसने चलाया है? वो गरीब बंदा तो नहीं चला रहा होता, वो जो रिवाज होता है वो इन मला नहीं चलाया होता। तो अय्याइदु को क्या ये वादा देता है तुमको या धमकी देता है तुमको, अन्नकुम इदा मित्तुम वकुंतुम तुराबम व इदामन अन्नकुम मुखरजून, कि जब तुम मर जाओगे, तुम मट्टी हो जाओगे, हड्डियां हो जाओगे, तो तुम निकाले जाओगे। ये था उनका कॉन्सेप्ट जो आखरत के बारे में बिगड़ा हुआ था, कि वो कहते थे ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मर जाए, मट्टी हो जाए, और उसके बाद उसको दोबारा खड़ा किया जाए। मैंने आपको जैसे बताया था, इस सूरत का जो सेंट्रल जो टॉपिक है ना, वो ईमान भी रिसालत है और इत्तेबाए रसूल है। तो रसूलों की रिसालत के ऊपर बहुत बात की गई है, और ये एक प्रॉब्लम चला आ रहा था पहले से। मुशरिकीन मक्का में को पहली दफा नहीं हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि आपसे पहले पैगंबर भी झुठलाए। तो वो कहते हैं कि कैसे उठाए जाएंगे, ये तुम्हें ये धमकियां देता है या ये तुम्हें वादे देता है। और आज एथीस्ट लोगों का यही अकीदा है, और बाज लोग मुसलमान होके भी यही कहते हैं, किसी ने नहीं उठना जी, कुछ नहीं है, हाई हाथ हई हाथ अली माता तू आदून। हई हाथ ये एक कलमा है, बुआद है, यानी दूरी हो, दूरी हो इसके जो तुम वादा दिए जा रहे हो। तू आदून मजहूर है कि जो तुमसे वादा किया जा रहा है या जो तुम्हें धमकी दी जा रही है, बहुत दूर की बातें हैं, ये ऐसे ही बातें हैं बनाई हुई, ये दूर की कौड़ियां हैं, समझाई। यानी वो इसको समझते थे कि ये इसको बिलिटल करते थे, हकीर जानते थे उनकी बातों को, और कहते थे बड़ी दूर की बातें हैं, ये कहाँ की बातें ले आए। और जब किसी की ना तसहीक करनी हो, तहकीर करनी हो, अकीर किसी को जानना हो, तो इस तरह से फिर वो बात करते थे, तो ये तो दूर की बात है। आज मुसलमान भी तो कहता है एंजॉय कर लो लाइफ को, कल की कल देखी जाएगी, कल जब आएगा ना देखी जाएगी, वो जैसे बड़ी दूर की बातें हैं। ये नहीं पता कि इधर मौत आई और उधर कयामत शुरू हो जाएगी। ये मुसलमान का अगर अकीदा हो जाए तो फिर कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान भी कहने लगे हाई हाथ हाई हाथ, बड़े दूर की बात, यानी नामुमकिन सी बात है, कल की कल देखेंगे जी, यानी आज तो जी लें। और फिर उनकी और क्या बातें, ये सारी उनकी बातें हैं जो बताई जा रही हैं यहाँ पे, कि उनकी सोच कैसी थी ना। इसे आप देखें कि ये सोच एक काफिर एक मुनकर की हो सकती है, मुसलमान की ये सोच नहीं होती कि वो ऐसे कहे, कहाँ उठाए जाएंगे, कुछ नहीं होता। इनकी सुन लें आप, उनको क्यों ये बात अजीब लगती थी या क्यों इस बात पे इतना एतराज था कि ये बशर है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने जैसे किसी इंसान को फॉलो करें, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था, ये हमारे जैसा ही है, हम क्यों उसको फॉलो करें, इसके नीचे लग जाएं हम, इसकी बातों पे चलें, जबकि ये तो अमीर भी नहीं है, हम तो अमीर हैं, ये हमेशा हर दौर में रहा है ना। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, वो कहते हैं, और आगे इसे कहते थे कि नहीं मगर ये बस ये दुनिया की जिंदगी है, सब कुछ इसमें हम जीते मरते हैं, हम तो नहीं उठाए जाएंगे। दुनिया किससे है, इसके दो रूट वर्ड्स हैं, दुनूफ और दाल नून या और दाल नून वाव। दुनूफ का मतलब होता है करीब, यानी ये पहली जिंदगी है ना, ये करीब है, आखिरत दूर है, ठीक है, अब दूसरी जिंदगी है। और दाल नून या से हो तो क्या, अदना, अदना आप इसी से देखते ना, अदना दाल नून या से ही अदना बनता है ना, हकीर, इसके मीनिंग में ये है, एक तो ये करीब है और बहुत हकीर है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि ये आखरत के मामलात जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये दुनिया में जीना मरना ये तो चलता ही रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो एक दुनिया की रीत है, इसी तरह हमेशा से चल रहा है। तो लेकिन इसमें तो कोई बात नहीं है कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, यानी ये जो मरना जीना है ये तो जमाने का एक यानी दायरा है, ये एक सर्कल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो जीना मरना तो चलता ही है, इसे हम ये तो नहीं ले सकते कि दोबारा भी हमें उठाया जाएगा। तो यानी उनके लिए क्या था, जिंदगी तो बस ये दुनिया की जिंदगी है, बस इसमें मौज मस्ती कर लो, इसमें जी लो, और ये बस। और मर भी गए तो क्या, मरना जीना तो चलता ही रहता है, एक दिन मर जाएंगे। और आज का मुसलमान जुबाने काल से यही कह रहा है, बस जुबाने हाल से भी कहते हैं, जुबाने काल से, सॉरी जुबाने काल से यही बात कहता है, जब वो कहता है कि जी लो आज और ऐश कर लो आज, कल की किसने देखी। और जुबाने हाल तो हमारे सारे ये बता रहे हैं, हमारे हालात, हमारा हाल, कि हमें आखरत पे कुछ ज्यादा यकीन नहीं है। किसी को पता हो कि मेरे घर मेहमान आने हैं तो वो उसकी तैयारी करता है, किसी के घर में शादी का पता हो तो उसकी तैयारी करता है। सोचें जिसको कयामत का यकीन हो, शादी तो हो सकता है पता नहीं हो या नहीं हो, या मेहमान आए हैं तो कह तो दिया है शायद आए ही ना, लेकिन कयामत तो इतनी यकीनी है जैसे दिन चढ़ा हुआ यकीनी होता कि हाँ दिन है, इतनी यकीनी है। फिर भी हमारी जिंदगियां उस तरह तैयारी करते हुए नजर नहीं आती, दिन को बिल्कुल हमने कैजुअल लिया हुआ। अभी मैंने सफर भी किया और मैं जहां गई भी, और मैंने इसी बात का दुख हो रहा था कि दीन डजंट मैटर, इतनी कोई बिग डील नहीं है, इसको भूल के हम चलते रहे हैं। हमारी एक्चुअल, हमारा ये दिन और रात का सिलसिला, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखरत क्या है, किधर है, वो देखी जाएगी जी, आखरत भी जब आएगी। अभी हमारे इतने मसले खुद के हैं, हम आखरत का सोचने बैठ जाए, या ऐसे लगता है कि जैसे ये फारिग लोगों का काम है। कहते हैं दुनिया नकद है, आखरत तो उधार है, तो उधार किसने चुकाया। यानी कैसी बातें हैं हमारे मुसलमानों में आज ये बात, और इतनी जहालत है आखरत के बारे में। कुछ कोई, हाँ उठ जाएंगे तो उसके बाद हमने जन्नत में ही जाना, हमें फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, नहीं तो अल्लाह गफूर रहीम है, वो ही हमें पार करा देना बस। ये कोई मसला ही नहीं, उससे ज्यादा बड़ा मसला बिजली का बिल देने का, उससे ज्यादा बड़ा मसला जॉब का, उससे ज्यादा बड़ा मसला ट्रैफिक का, उससे ज्यादा बड़ा मसला घर के और चीजों का है, ग्रोसरी का, इसका। लेकिन आखरत कोई मसला किसी के लिए है ही नहीं, कोई बिग डील ही नहीं, ऐसे लगता है आराम से कोई चीज है। जबकि हम सूरह हज में पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह ताला ने उस चीज से डराया, फकरों फाके से नहीं डराया, आपके प्रॉब्लम से आपको नहीं डराया कि देखो ये प्रॉब्लम भी आ सकता, अल्लाह ताला ने कयामत के दिन से डराया कि वो दिन डर जाओ उससे। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें लौटना होगा अल्लाह की तरफ। लेकिन इंसान उसको सबसे लाइट लेता है, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, और जिसकी तैयारी सिर्फ हम यहां कर सकते हैं, वहां जाके डोर्स विल बी क्लोज्ड, वहां पे कोई तैयारी नहीं। फिर भी हमारे में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, देखी जाएगी जी, इतने कैजुअल हैं हम, इतना लाइट है ये सब कुछ, क्यों कांपते रहे सहाबा भी, पैगंबर तक, कयामत के दिन को सोच के। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी आयात आती थी तो ऐसे रोते थे कि आपकी रोने की आवाज पिछली सफों तक जाती थी, क्यों? इतना आसान मामला था वो, तो फिर उनको क्यों नहीं पता था जो हमें पता चल गया। तो कहते ये तो दिन और रात आ रहे हैं जा रहे हैं। अब देखें इस तरह की जब सोच होती है ना, इसका नतीजा क्या निकलता है, पता है क्या निकलता है, कि इंसान इस दुनिया में गर्क हो जाता है, फिर ऑब्सेस्ड इस लाइफ से, इसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा होता है, इसलिए कि उसके पास कुछ लुक फॉरवर्ड करने को नहीं है ना, बस आखिरत तो आखिरत देखी जाएगी जी, वो छोड़ो उसको। अब देखें जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, जब अपनी बीवियों से इला कर लिया था, तो हज़रत उमर आए थे ना, जब आपको पता है वो बाला खाने में, और देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे चटाई के निशान पड़े हुए, तो आंखों से आंसू बहने लगे, फरमाया या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा अपने महलों में ऐश कर रहे, नरम बिस्तरों पे सोते, हाँ आप इस तरह से। आप अल्लाह के महबूब हो के इस तरह आपने फरमाया उमर तुम्हें अभी तक नहीं समझ आई। ये दुनिया उनके लिए और हमारे लिए आखरत है, ये उन्होंने फरमाया था। वो ये देख के नहीं चलते थे कि बस आखरत का मामला देखा जाएगी जी, अब यहाँ पे जी लो बस, ऐसे नहीं चलते थे। वो आखरत में जीते थे यहाँ रह के। हम पूरे दिन में बताएं, हर दिन क्या हमें अपनी आखरत याद रहती है? हर दिन हमें ये याद रहता है कि मुझे लौटना है, मुझे हिसाब किताब देना है, मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है। कोई काम करते हुए भी ये बात याद अगर आती है तो आपको मुबारक हो, आपके अंदर ईमान है। और अगर ये बात नहीं आती, एहसास नहीं होता, याद ही नहीं रहता, कुछ दिन गुजर जाते हैं फिर शायद कहीं सबक सुनते हैं तो याद आता है, तो फिर बहुत फिक्र की जरूरत है। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अला अल्लाही कज़िबा, नहीं है वो मगर एक इंसान, उसने घड़ लिया अल्लाह पर झूठ। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, और नहीं हम उसके लिए ईमान लाने वाले। वो कहते हैं ये तो एक इंसान ही है, इसने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ घड़ लिया, और यानी इससे एक बात तो ये पता चलती है, हो सकता है कि उनको अल्लाह का तो पता है, जब भी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के ऊपर ये झूठ बोहतान लगा रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, ये रसूल, और हम तो नहीं इसको मानने वाले, तो ये हो सकता है कि वो अल्लाह ताला को मानते थे और फिर शिर्क करते थे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से अल्लाह ताला की पहचान तो चली आ रही थी। आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम से पहले तो तौहीद ही थी। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो तंजन कह रहे हैं कि जिस अल्लाह का ये बड़ा नाम लेता है उसके ऊपर देखो झूठ लगाता है और हम तो नहीं इसको मानने वाले। कौला, उसने कहा रब्बिन सुरनी बीमा कत्तबून, ऐ मेरे रब मेरी मदद कर इस बवजह इसके कि जो उन्होंने मुझे झुठलाया। यानी जब बिल्कुल ही एंड आ गया, बिल्कुल ये था कि अब कोई और रास्ता कोई और चारा नहीं, तब रसूल कहते हैं कि ए अल्लाह अब हमारी मदद कर। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल बाद कहा कि ए अल्लाह तू मुझे निजात दे इस कौम से, ए अल्लाह इनमें कोई एक घर भी ऐसा ना हो कि जो काफिर का हो, वो बचे नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि तो उन्होंने कहा कि ए रब मेरी मदद कर इस पे जो इन्होंने मुझे झुठलाया, तो ए अल्लाह यानी आप फैसला कर दें। ये जो रसूल जब एंड होता था तो फिर ये कह देते थे अल्लाह आप तू फैसला कर, अब तू मेरी मदद फरमा दे इनके। और आप देखें कि जैसे वो बात करते थे ना कि एक इंसान है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा हुआ, यकीन जाने हैरत होती है कि आज भी लोग कहते हैं कि ये जो है ना मौलवी हैं, ये जो इमाम हैं, इन्होंने खुद ही ये बातें बनाई हुई हैं, और कोई अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, ये ऐसे ही डराते रहते हैं, ये दर्स देने वाले हैं, ये बस ये खुद ही दीन को सख्त बनाए में, कोई पर्दा नहीं होता, सिर्फ नजरों का पर्दा है, कोई आदि गवाही नहीं है औरतों की, सिर्फ ये इन्होंने ही बनाई हुई है, यही बुरे हैं, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं। ये देखें बिल्कुल सेम बात, ये इन्होंने ही सूद को हराम किया हुआ है, ये वाला आज का सूद तो कोई हराम है ही नहीं। तो उस वक्त अंबिया को कहते थे, आज जो नबियों का पैगाम लेके आता है उसको कह देते। कला अम्मा कलीलिन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया इस चीज को थोड़ी देर में ही इस चीज पे ये बहुत नादिम होंगे, बड़ा पछताएंगे, पशेमान होंगे थोड़ी देर में। कलील के साथ देखें, ये तो वो है ना एडजेक्टिव है, तो इसके साथ कोई नाउन भी तो आना चाहिए ना, कलील क्या चीज, कलील कलील कोई वक्त, कलील वक्त में ये पिछताएंगे, ऐसे होना चाहिए था ना, वक्त वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। इससे पता चलता है इतने कलील में कि वक्त को भी अल्लाह ताला ने ओमिट कर दिया, इतने थोड़ी इतना थोड़ा, जैसे आप कभी कहते हैं ना 1 सेकेंड, आप ये नहीं कहते मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ, आप कहते 1 सेकेंड, आप कहते मतलब बताना चाहते हैं, या 1 मिनट, तो कि मैं इतनी जल्दी आ रही हूँ, तो कलील कलील में ये नादिम होंगे। मगर क्या उस वक्त निदामत का कोई फायदा होगा जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ जाने का उसका वक्त आ जाए, उस वक्त पशेमान होने का फायदा नहीं। और आप ये देखें, अगर आप इनकी उससे भी देखें आगे की आयत पढ़ के, मैं आपसे लेसन पूछती हूँ, फाखजत हम सही हाथों, फिर पकड़ लिया उनको चिंघाड़ ने, कहते हैं कि जिब्राइल अलैहि सलाम की चिंघाड़ थी, चीख थी, या फिर एक और कोई धमाका था जिसके पास जलजला सा कोई आ गया, बिल हक साथ हक के, यानी दे डिजर्व्ड इट, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उन पे जुल्म किया, फजालना गुस्सा अन, तो अल्लाह ताला ने उनको बना दिया, हमने बना दिया उनको कूड़ा किरकट, ऐसे जैसे भूसा होता है, जैसे तिनके गार्बेज, जो अल्लाह ताला को नहीं माने और उसकी नहीं माने, रसूलों के पैगाम को रद्द कर दे, उनका अंजाम यही होता है। जैसे कि आपके घर में कोई चीज काम करना बंद कर दे, बल्ब है फ्यूज हो जाए, उसका काम तो था रोशनी देना, वो बुझ गया तो आप उसको गार्बेज ही करते हैं, सजा के रखते नहीं है। इंसान का भी काम एक ही था कि वो अल्लाह की इबादत करे जमीन पे, जब इंसान उससे ही हट गया तो फिर उसका कोई भी इस दुनिया में मकसद नहीं रहा, फिर वो कूड़ा क्रिकेट बना के फेंक दिया जाता है। फबादन लिल कौम ज़ालिमीन, तो हलाकत है जालिम कौम के लिए, क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलों को नहीं माना। आप मुझे बताएं, आप ये मैं पता चलता है कि उस कौम के ऊपर एक चीख भी आई, फिर उसके बाद जो आंधी तूफान आया उस कौम आद के ऊपर, वो तेज हवाएं चली, अल्लाह ताला ने जो ये इनका अंजाम बताया है, आपको क्या पता चलता है अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि कौमों के इन वाकयात से आपने क्या सीखा, तो आप क्या कहेंगे? जनरल एक रूल, अगर आपसे कौम आद नू की नहीं बात पूछ, जनरल एक रूल, वो ये बात है देखें कि जब इंसान गलत कारी करता है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो वो याद रखे अजाब यही कहीं है जो तैयार है उसको पकड़ने के लिए। वो असल में अपने लिए आग जला रहा है, समझ लिए आप, माचिस जला के आग जला रहे हैं, ये आप गुनाह नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए आग जला रहे हैं। इन कौमों को देखें, इन्होंने अजाब को दावत दी अपने आमाल की वजह से, यानी इंसान स्याकारी करता है ना, तो रूल सेम है। आज फिर क्यों नहीं खत्म हो रहे इस तरह लोग, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरह ना मिटाना जैसे पिछली उम्मतों को मिटा दिया गया, सफाया हस्ती से मिटा दिया गया। आज एक भी कौमे आद का बंदा आपको नहीं मिलेगा, सब मिट गए, उनको कफन दफन देने वाला भी कोई नहीं था, उनके जनाजे पढ़ने वाला कोई नहीं था, उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था, ऐसे बेयारों मददगार पड़े हुए थे, कोई भी नहीं बचा, ना बच्चा ना बूढ़ा ना जवान, ना कोई चरिंद ना परिंद ना जानवर, उनके सब कुछ खत्म हो गया, एवरी लिविंग थे, सिर्फ उनके मकानात खड़े रहे ताकि अल्लाह ताला दुनिया को दिखाए कि ये कौम थी। तो पता चलता है ना कि गुनाह जो है वो अजाब को दावत देते हैं, वो अजाब, अब वो फौरन नहीं आ रहा होता तो इंसान सोचता है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं आना, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं खड़ा हुआ है, वो अजाब उसके ऊपर कहीं वेट कर रहा है। अगर तो वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला ने तौबा बहुत बड़ी हमारे लिए रहमत रखी, तो तौबा कबूल हो जाए तो अजाब हट सकता है, वरना इस दुनिया में भी आ सकता है, वरना मरते वक्त आ सकता है, वरना कब्र में आ सकता है, वरना हशर के दिन आ सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गुनाहों को लेकर ही वो जन्नत में चला जाए, कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा फिर। सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम कुरूनन आखरीन, फिर इनके बाद भी हमने उठाया उम्मतों को दूसरी, अब देखो कितनी उम्मतें आई इनके बाद, कौम समूद, कौम साले, कौम लूत, कौम शुएब, बनी इसराइल, कितने लोग आए। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजल हवा मा यस्ताखिरून, नहीं सबकत की ले जा सकती कोई उम्मत अपने मुकर्रा वक्त से, और ना देर कर सकती, यानी मुकर्रा वक्त कौन सा, जो उनकी मौत का वक्त है, या जो अजाब का वक्त है उससे ना ताखीर हो सकती है ना जल्दी आ सकता है। फाइनल टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने एक मुकरर किया होता है हर कौम की जिंदगी और मौत का, जैसे इंसानों की जिंदगी और मौत होती है उसका वक्त मुकरर, इस तरह इनका भी होता। वो कहेंगे जल्दी अजाब ले आओ ना, ले आओ हमारे ऊपर कयामत, उससे आ नहीं जाना, और वो उससे भागना चाहे तो भाग नहीं सकते, फिक्स है। सुम्मा अरसलना रसूलना तत्रा, फिर हमने भेजा अपने रसूलों को, तत्रा जैसे लफ्ज है उसी तरह, जैसे लफ्ज में एक तकरार है ना इसी तरह ये इसका माना भी है, पै दर पै, एक के बाद एक या के बाद एक, नहीं इतने रसूलों को भेजा इंसानियत की हिदायत के लिए, अल्लाह ताला ने कितना इंतजाम फरमाया, और बेशुमार रसूल आए, एक एक वक्त में भी एक से ज्यादा रसूल होते थे जमीन पर, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम एक ही जमाने में थे, इसी तरह और बनी इसराइल में एक एक वक्त में बहुत सारे रसूल होते थे, लेकिन लोगों का हाल क्या, कुल्लमा जाअ उम्मत अर्रसूलुहा, जब जब भी आया किसी उम्मत के पास उसका रसूल, उन्होंने क्या किया, कज़्ज़बू, उन्होंने झुठला दिया। क्यों, रसूल की बात में वजन नहीं होता था, या रसूल को सही से बात नहीं उनको बताता था, या उनको समझ नहीं आती थी, क्या मसला था, मसला यही था कि इंसान अपनी दुनिया में इतना गर्क हो जाता है कि वो रसूलों की भेजी हुई तालीमात के मुताबिक चलने को अपने लिए मुश्किल ख्याल करता है, उसकी अना आ जाती है, उसका तकब्बुर आ जाता है, और इस दुनिया की जिंदगी के जो मर्जियां हैं, जो नफ्स की पूजा है, वो छोड़नी पड़ती है, तब रसूल की तालीम के ऊपर अमल किया जा सकता है। अगर अपने नफ्स को पूजते रहे और अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करते रहे तो फिर रसूल की बात तो नहीं मानी जा सकती। आज भी क्यों मुश्किल लगता है, देखिए ना रसूल का पैगाम तो एज इट इज हमारे पास मौजूद है, उनकी जात नहीं है मगर उनकी तालीम तो सारी है, फिर क्यों नहीं अपील करती लोगों को, क्यों नहीं उनको समझ आती, समझने में कोई मुश्किल नहीं है, अकल में जाने में कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ ये कि हम ये अपना लाइफस्टाइल छोड़ें कैसे, हम तो नहीं छोड़ सकते। फअत्बअना बादहुम बादन, तो पीछे लाए हम इनमें से बाज के बाज को, वजालनाहुम अहादीस, और बना दिया हमने इनको अफसाने। बड़ी बड़ी कौमें आई, बड़ी बड़े ताकतवर बादशाह आए, फिर क्या बन गए, बातें ही आज उनकी कहानियां ही मिल रही है ना, कहाँ गए वो, उनमें भी कोई बड़ी माहिर औरतें होंगी, बड़ी काम करने वाली होंगी, बड़ी वो कौम जो है हुनरमंद होगी, बड़ी स्किल्ड होगी, बड़ा उनके पास तरह तरह की चीजें करने का की वो सलाहियतें होंगी, बड़ी बासलाहियत कौम होगी, आप देख लेना कौम है फिरौन, कौम है आद, कितने कितने माहिर, कितने बासलाहियत थे, तो लेकिन कहाँ गए, एक के बाद एक अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उनको अफसाने ही बना दिया, एक गई फिर दूसरी गई फिर तीसरी गई, फबादन लिकौमिल्ला युमिनून, तो दूरी हो उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाती। दूरी का मतलब क्या, पहले जालिमों पे दूरी हो फिर ना ईमान लानों वालों पे दूरी हो, क्या दूरी, दूरी मतलब लानत, क्योंकि लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। आप स्पेसिफिक किसी को नहीं कह सकते फलां बंदे के ऊपर, या ये जो है ये आदमी ये औरत इसके ऊपर लानत हो, इस फलाने सियासतदान पे लानत हो, फलाने उस इस आदमी के ऊपर लानत, ऐसे नहीं आप कर सकते, इसलिए कि लानत बहुत बड़ी बात है जो लोग मुंह से निकाल देते हैं बहुत आराम से, और वो क्या कि जब लानत कोई इंसान भेजता है तो वो लानत आसमानों की तरफ चढ़ती है और वहां पर वो रास्ता नहीं पाती, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, हालांकि वो जानता है कि जिसने ये लानत भेजी है, जिसके ऊपर भेजी है, क्या वो उसका मुस्तहिक था, फरिश्ते अगर वो कहते हैं हाँ मुस्तहिक था तो अल्लाह ताला फरमाता है उसके ऊपर वो लानत डाल दो, और अगर वो कहते हैं नहीं अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था तो अल्लाह ताला फरमाता है इस लानत को पलटा के इसी पे डाल दो जिसने ये बात कही है, तो सोचे अगर वो लानत के मुस्तहिक नहीं होगा वो बंदा तो तो वो लानत अल्लाह ताला माफ फरमाए हमारे पर पलट के आ सकती। लिहाजा किसी जानवर पे, किसी चीज के ऊपर, अपने ऊपर, अपने घर वालों पे, किसी पे लानत ना भेजे। कई बाज लोग कहते हैं लानत है मेरे ऊपर अगर मैं ऐसी करूं, ये भी नहीं कहने की जरूरत, आप यू नेवर नो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत ने एक दफा अपनी ऊंटनी पे लानत भेज दी थी तो आपसे सलम ने फरमाया अब तुम इसके ऊपर सवार ना हो क्योंकि तुमने इसके ऊपर लानत भेज दी। इतनी बड़ी बात है ये, जब अल्लाह की रहमत से ये दूर है, अब इसको छोड़ दो बस। हाँ वैसे कह सकते हैं कि काफरों के ऊपर अल्लाह की लानत है, जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत है, झूठों पे अल्लाह की लानत है, ये अल्लाह ताला ने खुद बताई। फिर वो जो जो भी झूठा होगा वो उसके ऊपर पड़ जाएगी। जरूरी है कि हमने ये कहना है फलाने के ऊपर और अपने ऊपर ही ना अल्लाह ना करे कि लानत ले ले। इसी तरह किसी काफिर को भी नहीं, ये सॉरी किसी को भी काफिर कह सकते। अनलेस वो काफिर है, अगर तो वो तो काफिर है ही, लेकिन फलाना काफिर, फलां काफिर, ये जो फतवे देना है ना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी दूसरे को काफिर कहता है, तो अगर तो वो काफिर है तो ठीक है, अगर वो काफिर नहीं है तो दोनों में से एक काफिर जरूर हो जाता है, यानी या तो वो काफिर है या कहने वाला काफिर हो जाएगा। समझ आई ना? तो इतने ये इजी लेने वाली चीजें नहीं है। और बाज औरतें अपने बच्चों के ऊपर लानत भेजती रहती, लाना तेरी जुबान पे, लाना तेरी शक्ल पे, लाना तेरी फलां, ये क्या बात है? जहन्नम में औरतें इस तरह से ही जाएंगी कि वो इतनी लानतें भेजती हैं। इस लफ्ज को अपनी जिंदगी से निकाल दे। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, फिर हमने भेजा मूसा अलैहि सलाम को और उनके भाई हारून अलैहि सलाम को भी आयाती ना अपनी निशानियों के साथ, और ये निशानियां कौन सी थी? मोजजात व सुल्तान मुबीन और दलाइल के साथ, खुले दलाइल जो अकल को अपील करते हैं, जो किसी बंदे को भी समझ आ जाए आराम से। कितनी सारी निशानियां थी ना, कितने मोजज़ाते। बाज कहते हैं भी आयातीना से मुराद उनके दूसरी बात की निशानियां थी और सुल्तान मुबीन से मुराद उनका आसार था। बाज कहते हैं कि नहीं, वो पहली आयातीना सारी निशानियां और सुल्तान मुबीन उनके जो दलाइल थे। किसकी तरफ भेजा? इला फिरौन व मलाईही, फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकबर किया, वक कानू कौमन आलीन, और वो बड़े मुतकबर लोग थे और अल्लाह ताला को तकबर पसंद नहीं है। फरमाया तकबर मेरी चादर है, अल्लाह ताला की चादर है, जो इस जिसको अल्लाह ताला से छीनने की कोशिश करेगा, खुद तकबर करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डाल देगा। और तकबर क्या होता है? हक को ना मानना, बतरुल हक व गमत उन्नास। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तो खुद ही तारीफ बता दी है। क्या अच्छी गाड़ी होना, अच्छे कपड़े पहनना, ये कोई तकबर नहीं है। ये नहीं तकबर, तकबर ये कि जब आप दूसरे को हकीर देखना शुरू कर दो कि मैं तो सबसे ऊंची और बाकी सारे क्या चीज है मेरे आगे, ये तकबर है। और बाज दफा तकबर क्रीप इन कर जाता है, अगर राई के दाने के बराबर भी तकबर हुआ ना किसी के दिल में, जन्नत में नहीं जा सकेगा। और खैर फिरौन और उसके सरदारों में तो तकबर भरा हुआ था, उन्होंने कहाँ सुननी थी मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम की बात। फकालू, तो कहने लगे, वो कौन कहने लगे? फिरौन और उसके सरदार जो, अनुमिनु लिबशर ऐनी मिथलिना, क्या हम ईमान ले आए एक बशर के ऊपर जो हमारे जैसा है? वकौमुहुमा, और हमारे और इन हुमा का मतलब इन दोनों की, कौमुहुमा लना आबिदून, और उन दोनों की कौम हमारी तो गुलाम है, आबिद है वो, हमारे गुलाम है, तो हम इनके ऊपर ले। तो ऐसे ही जैसे वो समझ लें कि ये तो अस्तगफिरुल्लाह, यानी गरीब लोग, गुलाम कौम, छोटे लोग, तो हम क्या इन छोटे लोगों की बात सुन ले, ये तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। कौम और बरादरियों को तो लोग देखें उस वक्त भी ऐसे समझते थे ना कि अगर इस कौम का, इस बरादरी का कोई बंदा उठ के कोई बात कह भी रहा है तो ये इसकी क्या, ये तो ऐसे ही आज लोग कह देते कमी कमीन कौम से है, ये तो फलां है, ये तो ऐसे हैं। और यही तकब्बुर होता है कि आप किसी इंसान को नहीं देखते, उसके कौम को देख के फिर उसके साथ मामला कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मुत्तकी परहेजगार हो। अब वाकई बनी इसराइल थी तो गुलाम कौम ही, ये बात तो गलत नहीं है, लेकिन फिर उनकी इस कोटेशन को यहाँ पे क्यों कहा गया कि उन्होंने कहा सच ही कहा था कि इनकी कौम हमारी गुलाम है, गलत तो नहीं थी, लेकिन इसमें तकब्बुर की बू है कि उनको कमतर समझा। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत दी हुई थी। तो दुनियावी स्टेटस की बात नहीं होती, असल बात ये थी कि किस में ईमान और तकवा है। इनमें एरोगेंस कितनी ज्यादा थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बड़े करने वाले, बड़े मुतकबिर लोग थे। फकद्दबू हुमा, तो उन्होंने झुटला दिया किनको, हुमा इन दोनों को, किन दोनों को, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। फकानू मिनल मुहलकीन, तो वो हो गए हलाक होने वालों में से। क्या मैंने आपको बताया था अभी, हर कौम से क्या सीखे आप, कि जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है ना, गुनाह करती है, अजाब वहीं खड़ा हुआ, अजाब आ गया। ठीक है, अब आपको चूंकि ये आयतें साथ साथ मिली हुई है, तो आपको लगता है कि अच्छा फिर उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उनके ऊपर अजाब आ गया। नहीं, अल्लाह ताला ने तो बहुत मोहलत दी, और इसी मोहलत के ऊपर लोग गलत गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। या पता नहीं अल्लाह ताला को पता ही नहीं चला, नाउज़ु बिल्ला, या अल्लाह ताला भूल ही गया हमें अजाब देना, नाउज़ु बिल्ला, या कुछ होता ही नहीं है शायद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये झूठी बातें करते, डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं तो कब से यही कर रही हूँ, लेकिन कुछ हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो लोग समझ लेते हैं कि अब कुछ होना भी नहीं। हालांकि उसने वो आग जला दी भी है, बस वो आग की उसको पकड़ने की देर है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अजाब कहीं वेट कर रहा होता है, समझ लें अजाब को हमने अपने लिए तैयार कर लिया, वो काम हम जो कर रहे हैं ना, अपने लिए अजाब तैयार कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं ना, हम अपने लिए अजाब तैयार कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त आ ही जाता है, कभी कभी इसी दुनिया में ही आ जाता है, अल्लाह ताला इसी दुनिया में जिंदगी में ही पकड़ लेता है। तो फिर डरना चाहिए ना, गुनाह करते वक्त बड़े बेधड़क हो के, बड़ी दिलेरी के साथ कभी ना गुनाह करें। वलकद आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून, हमने मूसा अलैहि सलाम को भी किताब दी, कौन सी, तौरात, किस लिए, ताकि वो हिदायत पा जाए। अल्लाह ताला ने तो उनकी हिदायत का हर तरह से इंतजाम किया, ये किसी तरह ये मान जाए, किसी तरह इनको समझ आ जाए, किसी तरह ये राह रास्त पर आ जाए, ऐसी मुतकब्बिर कौम होने के बावजूद। और बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने किताब दी थी दरअसल, जी बनी इसराइल के लिए, बनी इसराइल, हालांकि वो खुद पैगंबरों की औलाद थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उनके लिए भी किताब उतारी ताकि वो लोग हिदायत पा जाएं। इसका मतलब किताब का एक मकसद है, कोई ये नहीं कह सकता हम तो पैगंबरों की औलाद है, हम तो चुने में, हम तो खुद ही बहुत बड़े पहुंचे में, हमें किताब की क्या जरूरत, हमें हिदायत की क्या जरूरत, हम तो पहले ही हिदायत याफ्ता हैं। उस कौम के लिए भी जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया, जिसको अल्लाह ताला ने निजात दी फिरौन से, और जिसको अल्लाह ताला ने मनोसलवा अता फरमाया और उनके लिए पानी निकाला सहरा में, उस कौम के लिए भी जिस जो कह सकते हैं एक तरह से कि अल्लाह की बड़ी लाडली कौम थी, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना, नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहान वालों पे, बड़ी लाडली कौम थी। तो वो कहते हैं हम लाड में ही रहते हैं फिर, जैसे हम कहते हैं ना, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही हैं, हमें क्या जरूरत है किताब पढ़ने की या कुछ सीखने की। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी किताब उतारी, ये नहीं कि अगर तुम कोई चुने हुए हो या तुम्हें कोई फजीलत ही, तुम्हें तो किताब की जरूरत ही नहीं, किताब हिदायत के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए। इस तरह आज हमें भी किताब दी गई है, बेशक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन फिर भी हमें हिदायत चाहिए। फजीलत लेके बैठना थोड़ी है, किताब ही तो रहनुमाई करेगी कि अब इसके बाद करना क्या है। तो अल्लाह ताला ने हिदायत का पैगाम तो पहुंचा दिया, ताकि अल्लाह ताला निजात दे दे लोगों को जहन्नुम से, ये बच जाएं, लेकिन इंसान खुद ही अपनी तबाही का इंतजाम करता है। वह जालना बना मरियम व उम्महू आयतन, और हमने बना दिया इब्ने मरियम को, ईसा अलैहि सलाम को, और उनकी माँ को एक निशानी। वा आवैना हुमा, और पना दी हमने इन दोनों को, इला रब्वतिन, एक बुलंद जगह पे, रब्वा कहते हैं ऊंची जगह को, जाति करारिन व माइन, जहां पे करार था, और माइन, माइन कहते हैं चश्मे को, बहते चश्मे वाली जगह थी वो। और ये कौन से वक्त की बात है, जिस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहि सलाम को जन्म देने के लिए एक अलग थलग जगह पे चली गई थी। तो वहां पे अल्लाह ताला ने चश्मा भी जारी फरमा दिया, खजूरें भी थी वहां पे, और अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी का मामला फरमा दिया। और इससे पहले आया कि अल्लाह ताला ने इनको आयत बनाया, इब्ने मरियम को और उनकी माँ को। ईसा अलैहि सलाम की तो समझ आती है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने पंगूड़े में कलाम किया, बहुत बड़ी बात है, निशानी है अल्लाह की तरफ से। लेकिन हजरत मरियम कैसे निशानी है कि उन्होंने भी जन्म दिया एक बच्चे को बगैर किसी मर्द के उनको छुए हुए, किसी मर्द ने उनको छुआ नहीं था, फिर भी वो हामिला हुई और अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई। दूसरे देखे उनके पास वो बेमौसमी फल आए होते थे जब जकरिया अलैहि सलाम आते थे, तो ये भी एक निशानी है ना अल्लाह ताला की। तो वो लोग कहते थे ना कि ये नबी बशर क्यों है, और बगैर बाप के अगर पैदा हो गए तो वो तो फिर बशर है ही नहीं, वो तो इंसान हो ही नहीं सकते, वो तो बस खुदा ही हो गया। इसका भी इनकार हो गया यहाँ पे कि वो अल्लाह ही की एक निशानी है। या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, तमाम रसूलों को अब ये पैगाम दिया गया। तो कुरान में क्यों दिया गया, ये बताया जा रहा है कि हर जमाने में जब रसूल आए थे ना तो उनको ये पैगाम दिया गया था उन उनके जमाने में, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सारे रसूलों को, रसूल जमा का सीगा है, सारे रसूलों को ये कहा गया उनके वक्त में। दो इंस्ट्रक्शन दी गई, कुलू मिनत तो ये बात, खाओ पाकीजा चीजों में से, वामलु सौलेहन, और अमल करो सौलेह, नेक अमल करो, खाओ पाकीजा चीजें। तैयब क्या होती है, पाकीजा, हलाल, लज्जत बख्श, ये होती है, यानी हलाल चीज पाकीजा ही होती है, यानी तैयब ही होती है। तो यानी खबीस चीजें जो है वो हराम है, तैयब चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है। तो तमाम पैगंबरों को ये मैसेज क्यों दिया गया, क्या ये इतनी जरूरी बात है खाना पीना के, हलाल खाओ तैयब खाओ, और तैयब के अंदर हलाल भी है, गला सड़ा ना होना वो भी है, जो मुजरे सेहत है उससे परहेज वो भी तैयब के अंदर आता है, ये सब चीजें। अब एक को क्या इतनी बड़ी बात थी कि उनको ये कहा गया कि आपने हलाल पाकीजा लज्जत बख्श ये खाना खाना है जो तय्यब है, इसलिए क्योंकि इंसान के जो रूहानियत है, जो स्पिरिचुअलिटी है, और जो उसका अमल है वो उसकी खुराक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई जिस्म हराम से परवरिश खा पाता है तो उससे हराम ही सरजत होता है, वो हराम ही अमल करता है, और अल्लाह ताला हराम से पले हुए जिस्म की दुआ भी कबूल नहीं फरमाता। आप देख लें एक आदमी जिसकी हदीस में आता है कि वो बिखरे हुए बाल हैं, मुसाफिर है, अल्लाह ताला के आगे दुआ करता है कि अल्लाह मुझे ये दे दे ये दे दे, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बिखरे हुए बालों वाला आसमान की तरफ हाथ फैला के दुआ कर रहा है, दूर दराज का सफर करके आया, वो बाहर आलूद है उसकी, यानी बेचारगी की एक हालत, कहता है मेरे रब ऐ मेरे रब, लेकिन दुआ नहीं कबूल हो रही। क्यों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी गिज़ा हराम, तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। ये मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह हु अकबर। इसलिए ईमान वालों को भी कहा गया, रसूलों को, तो ईमान वालों को सूरह बकरा में हम पढ़ चुके, या लदीना हमने कुलूम में हूं तो ये बात ईमान रजकना को तय्यब में से खाओ। तो रसूलों को उनके जमानों में, यानी ये हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ इतने पहले के जमानों में रसूलों को भी यही कहा गया, तय्यब खाना। और हलाल में सिर्फ जबीहा को हलाल नहीं कहते, हलाल कमाई वाला वो भी हलाल। अगर अगर आप फल खा रहे हैं वो तो हराम नहीं है, लेकिन जिस कमाई से वो आया है वो हराम है, तो वो तय्यब नहीं है। लिहाजा अगर पैगंबरों के ऊपर ये अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, तो हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम इस चीज का एहतमाम करें कि हम हलाल कमाई खाएं और हलाल चीज देखें और बड़े वॉच करके चीजों को अपने अंदर लेकर जाएं। आप देखते हैं जो कौमें जो चीज खाती हैं उनके अंदर वो ही चीज रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जो खिंजीर को खाने वाले लोग हैं उनके अंदर बेहयाई रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए कि खिंजीर एक बेहया जानवर, और उनके अंदर जो आप खाओगे यू आर वॉट यू ईट। ये तो अब अंग्रेजी का भी यही मुहावरा है, यू आर वॉट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें वो जो चीजें हलाल की हैं ना वो सारी तय्यब हैं, वो सब पाकीज़ा हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हलाल की। बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए इसका मतलब है कि वो हराम इसलिए उनमें कुछ खबासतें हैं तो अल्लाह ताला ने हराम की है, ऐसे ही नहीं कर दी बिला वजह। इनमें कोई नापाकी होगी या कोई उनकी गंदगी होगी या कोई चीज उनके अंदर होगी कि अल्लाह ताला ने उनको हराम किया। तो इस और दूसरा फिर अमल करो सवाले, इसका मतलब अमल का ताल्लुक है आपकी खुराक से। जब इंसान हराम कमाई खाता है या हराम या खबीस चीजें अपने अंदर कंज्यूम करता है, तो तभी इंसान नेक अमल में सुस्ती करने लगता है, तभी इंसान से भलाइयां नहीं हो पाती, तभी इंसान पीछे रहने लगता है, क्योंकि इंसान की खुराक के असरात उसके ऊपर होते हैं। इसी तरह मांग के खाना, ये तर खाना जबकि जरूरत भी नहीं है, बस मेहनत नहीं करनी, ये भी सारी इंसान को हराम की तरफ ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसको भी नबी बना के भेजा है सबने बकरियां चरानी, और उनके तो लोगों ने पूछा कि आपने भी, फरमाया हाँ मैं भी चंद किरात के एवज मक्का वालों की बकरियां चराता था। सोचे अब आप जरा के बकरियां चराना एक हम सोचते हैं कि छोटी बात है, लेकिन तमाम पैगम्बरों ने ये की, यानी उन्होंने रिस्क अपने हाथ से कमाया, अपनी हाथ की कमाई खाई। और दाऊद अलैहि सलाम इतने बड़े बादशाह होके अपने हाथ की कमाई खाते थे। तो तय्यब खाएं और अपनी औलाद को तय्यब खिलाएंगे तो वो नेक अमल करेंगे, नेकी उनके अंदर आएगी। रिस्क हलाल खिलाइए। आपको पता है हज़रत आयशा बयान करती हैं, अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था, आपको मैंने ये वाक्य बताया था, वो किसी दिन कहीं से कुछ खाना ले आया तो इनको इतनी भूख लगी हुई थी कि पहले पूछ लेते थे, अब पूछे बगैर एक लुकमा मुंह में रख लिया। फिर उसे पूछा कि कहाँ से, उसने कहा आपने मेरे से पूछा नहीं है कि ये मैं कहाँ से लाया, बताया फरमाया बताओ कहाँ से लाया, क्या था मैं वो काहिन कहानत करता था कभी कभी, किसी को कोई बात बता देता था तो एक कबीले वालों को बताई थी, वो बात सच हो गई तो आज उन्होंने उसके बदले में मुझे ये यानी दिया है खाना। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल हो गया था कि तय करने की कोशिश कर रहे थे, तय नहीं हो रही थी, वॉमिट नहीं हो रही थी कि इसको निकाल दें, तो अपने हलक के अंदर हाथ डाल डाल के कह कि मेरे अंदर ये लुकमा ना चला जाएगा, इतनी ज्यादा एहतियात, और डायरेक्ट हमारी नेकियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो अगर हमें सुस्तियां आती तो हम अपनी खुराक का भी एक दफा जायजा लें। इन्नी बिमा तामलून आलीम, और बेशक साथ उसके जो तुम अमल करते हो जानने वाला हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम काम कर रहे हो ना उसको मैं देख रहा हूं मेरी नजरों में। अब देखें साले अमल वो नहीं होता जो दुनिया कहे कि ये साले अमल है, ये बड़ी नेक काम है, वो लोग तो बिदतों को भी साले अमल ही कहते हैं, ने बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं वो बिदतें होती हैं। साले अमल वो हैं जो अल्लाह के नबी हमें बता दे उनके तरीके के मुताबिक हो और सिर्फ अल्लाह की खातिर हो, वो साले अमल होता है, उसमें बिदतें तो सारी निकल गई। व इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मत वाहिदा, और बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है, वह अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूं बस डरो मुझसे। ये तुम्हारी उम्मत यानी ये सारी ग्रो आदम अलैह सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सब एक दीन पे थे। उम्मत का मतलब जमात भी होता है, ग्रो भी होता है, जो एक कॉज के ऊपर जमा हो, और दीन भी होता है। तो यानी इन सब का दीन एक था, अगर यहाँ पे हम दीन का माना लें तो सबका दीन, सबका तरीका सेम था, सब ने अल्लाह की तरफ दावत दी। तो यानी एक दीन लेकर आए, इसीलिए तो सबका दीन इस्लाम ही था। बेशक उनके दरमियान बहुत बहुत फासला था रसूलों के, अलग अलग टाइम पे आए, मगर देखिए फासले मिट गए, अल्लाह ताला ने उनको एक उम्मत कहा, एक उम्मत करार दिया। तो इससे पता चलता है कि जब इंसान का अकीदा, उसके काम, उसका पैगाम, उसकी सोच सब सेम होती है, तो अल्लाह ताला उनको एक ही ग्रोह बना देगा कयामत के दिन भी। समझ आई बात? इनको उम्मत वाहिदा कहा ना। तो अगर इंसान के काम किसी ऐसों के तरह है, मिसाल के तौर पे किसी के काम फिरौन की तरह के हैं, तो बेशक हजारों साल गुजर गए उसको दुनिया से गए हुए, कयामत के दिन उसी के साथ मिला दिया जाए। जिसके काम नबियों वाले काम है, उनके तरीके पे चलने वाला है, तो कयामत के दिन उन्हीं के पास होगा, ये एक ही उम्मत होंगे। अना रब्बुकुम फत्तकूनी, बस मैं मेरे से ही डरो, मैं तुम्हारा रब हूं, किसी और से मत डरो।